मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 4 दिसंबर 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस एफईआईएस के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबने स्थान के बारे में जो फिलहाल हम लोग बातें कर रहे हैं इस विषय को बहुत अधिक पसंद किया है और अपने अपने ढंग से आप लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजी हैं। डेफिनेटली आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से मुझे इसके नए नए बिंदु मिले हैं और उन्हीं सबको आधार बनाकर मैं अपने इस विषय को आगे बढ़ा पा रहा हूं। और कल मैं जो बात आपसे कर रहा था उसे ही अब मैं एक उदाहरण के जरिए यहां आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि कल मैं इस बिंदु पर बात कर रहा था कि जब भी हम स्थान के बारे में निर्णय लेते हैं तो आगे जाकर के क्या हो सकता है इसका अंदाजा हमें नहीं होता है और बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि हमारे जो अनुभव हैं वो सीमित हैं, हमारी जो दृष्टि है वो सीमित है, तो हम तो उसी के आधार पर ही अनुमान लगा सकेंगे। लेकिन जब हम तात्कालिक रूप में निर्णय ले रहे होते हैं तो उसमें इमोशंस को शामिल मत कीजिएगा। अगर आप इमोशंस को शामिल कर लेंगे तो मान करके चलिए कि आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भावना रहित हो जाइए। अगर आपके मन में कोई भावना उठ भी रही हो तो आप उसके साथ संतुलन बनाइए। स्थान छोड़ रहे हैं, अपना मान लीजिए कि वर्तमान स्थान आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको देश निकाला दे दिया गया है, जिंदगी भर के लिए आपको वहीं जा करके रहना है। वहां से आप लौट सकते हैं, बीच बीच में आ सकते हैं, अपना उद्देश्य पूरा करके आप वापस आ सकते हैं, ऐसे ढेर सारे आगे चल करके स्थितियां बनेंगी। लेकिन तात्कालिक रूप में जो आपका निर्णय होना चाहिए वो बहुत ठोस होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। देखिए, जब हम अपने को संभावनाओं वाले क्षेत्र में डाल देते हैं, यानी कि हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां संभावनाएं ही संभावनाएं हैं, या यूं कह लीजिए कि जहां हम अभी थे उसकी तुलना में ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, तो होता क्या है, घटनाओं के बारे में आप एक तथ्य अपने दिमाग में बिल्कुल रचा बसा लीजिए घटनाओं के बारे में कि कोई भी घटना जो एक बार घटित हो जाती है तो ये मत मान करके चलिए कि वो घटना घटित हो गई और बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है, वह एक घटना अगली घटना को जन्म देती है। अब दो घटनाएं हो गई, ये दो घटनाएं मिलकर के फिर किसी अगली घटना को जन्म देती हैं, यानी कि जो घटनाएं हैं उनकी लगातार श्रृंखलाएं बनती चली जाती हैं, ये एक कड़ियों की तरह काम करती हैं। अब मेरे कहने का मतलब यहां यह है कि जब आप अपने को संभावनाओं वाले स्थान में पहुंचा देते हैं तो वहां पहुंचने के बाद एक घटना घटेगी, कोई भी एक घटना घटेगी। अगर आप एक्टिव हैं तो घटनाएं अपने आप आकर के नहीं घट जाएंगी, है ना, आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। और जब एक घटना घटित हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद या तात्कालिक रूप में जो भी हो दूसरी घटना घटने लगेगी, फिर तीसरी घटनाएं घटने लगेंगी, चौथी घटना घटने लगेगी, ढेर सारी घटनाएं एक साथ घटने लगेंगी और ये वो घटनाएं होंगी जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसके बारे में आप सबके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहूंगा जो खुद मेरे अपने जीवन से ही संबंधित है। हालांकि आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़िए, अगर इस लिहाज से आप उसे पढ़ेंगे, इस दृष्टि से, तो आपको ढेर सारी ऐसी ही चीजें दिखाई देंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, हुआ क्या कि मैं एक बहुत छोटे से गांव में रहता था, वहां हमारी एक छोटी सी दुकान थी। अब उस दुकान में हम तीन लोग हो गए थे जो काम करने के लायक थे। मेरे चाचा जी थे, वो तो काफी उम्र के थे, उस समय उनकी उम्र लगभग 40-42 साल की होगी। मेरे से बड़े चाचा थे जो मुझसे 2-3 साल बड़े थे और उस समय मेरी उम्र, मैं मान लो कि अगर 18-19 साल की थी तो उनकी उम्र 20-22 साल की थी। और बिजनेस की दृष्टि से ये उम्र एक तरह से मेच्योर एज मानी जाती है। और फिर मैं था, हम तीनों काम करने की स्थिति में थे, व्यापार करने की स्थिति में थे। लेकिन वहां जो हमारी दुकान थी उसकी स्थिति ये थी कि एक व्यक्ति भी उसके लिए नहीं चाहिए था, लेकिन आधा व्यक्ति तो हो नहीं सकता है, तो एक व्यक्ति उसके लिए चाहिए था, यानी कि दो व्यक्ति हम सरप्लस थे। अब क्या करें, जिम्मेदारियां थी, बहनें थी, शादियां उनकी दिखाई दे रही थी, तो ये हुआ कि नहीं, किसी न किसी को अब यहां से मूव करना चाहिए, एक नया काम शुरू करना चाहिए। लेकिन उस गांव में तो आप कर नहीं सकते थे। तो ये जिम्मेदारी मुझे दी गई और मैं गया फिर वहाँ एक जगह पे, बतौली और सेदम का एरिया पड़ता है जो छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा जिले में रहते हैं अंबिकापुर के आसपास, वो सब जानते होंगे। 10-12 दिन तक मैंने साइकिल से उस पूरे के पूरे आसपास के क्षेत्रों का सर्वे किया और करने के बाद एक स्थान का निर्धारण किया, शांति पारा जो बतौली बिल्कुल रोड पर है, कि यहां मुझे अपनी दुकान खोलनी है। मेरे बड़े फूफा जी थे, बड़े फूफा जी इसलिए कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी बुआ उनको ब्याही गई थी, तो हमारे हम लोगों के मुंह से बड़े फूफा जी ही निकलता है क्योंकि हमारी चार बुआ हैं। तो दोस्तों, बड़े फूफा जी ने एक प्रस्ताव रखा कि उनके दुकान के ठीक सामने एक छोटी सी दुकान उस समय बनी थी या खाली हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि तुम आकर के यहाँ चाहो तो दुकान खोल सकते हो, और बहुत छोटी सी दुकान थी, मतलब समझ लीजिए कि जो पान की दुकान खोलने लायक दुकान थी उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। दोस्तों, मैं स्थान निर्धारित कर चुका था, लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरे दिमाग में देखिए उस समय क्या थॉट आया कि अब मेरे पास दो विकल्प हैं, या तो मैं शांति पारा में अपनी दुकान खोलूं या मैं अपने शहर में दुकान खोल लूं। शहर में दुकान खोलने के लिए मेरे मन में बहुत हिचक थी क्योंकि मैं तो गांव का लड़का था, गांव की दुकानदारी जानता था, और यहां शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग, इनके साथ मैं कैसे व्यापार कर सकूंगा, मुझे वो तौर तरीके नहीं आते हैं, वो भाषा नहीं आती है, सेल्समैन मैं हूं नहीं, तो मैं यहां तो बुरी तरह से असफल हो जाऊंगा। शांति पारा में खोलूंगा तो वहां मैं दुकान बड़े अच्छे से चला लूंगा, ये मेरे मन में हिच थी। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में एक विचार आया, विचार ये आया कि अगर मैं शहर में दुकान खोल लेता हूं तो मेरे पढ़ने की संभावनाएं थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। दोस्तों, उस समय मैं बीए प्रीवियस का एग्जाम दे चुका था, बीए फाइनल में था, तो बीए प्रीवियस में मेरे 58 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे। तो मैं सोच रहा था कि यार अगर बीए में फर्स्ट क्लास आ जाए तो मजा आ जाएगा, बात बन जाएगी। हालांकि कोई ऐसा नहीं था उद्देश्य कि कोई लेक्चरर बनना है और पीएचडी करनी है या सिविल सर्विस एग्जाम देना, कुछ नहीं, ये सब तो जानते भी नहीं थे, लेकिन मन में ये भावना जरूर रहती थी कि अगर पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो इसको भी अच्छे से कर लिया जाना चाहिए, तो बड़ा मजा आ जाएगा अगर हम बीए फाइनल फर्स्ट क्लास भी कर लें तो। लेकिन अब ये होगा कैसे, अपने दम पर मुझे लग गया कि शायद ना हो पाए। तो मुझे लगा कि अगर मैं शहर में आ जाता हूं तो यहां कुछ दोस्त लोग मिल जाएंगे, यहां प्रोफेसर्स लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, तो शायद इनसे मुझे कुछ मदद मिल जाए, किताब उताब की जानकारी मिल जाएगी, तो शायद मेरी फर्स्ट क्लास आ जाए। तो मुझे कम से कम 62% स्कोर करना था और ग्रेजुएशन में बहुत मुश्किल था आर्ट्स में लाना, केवल ये एक थॉट दिमाग में था। तो दोस्तों, अंततः मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे शहर में ही दुकान खोलनी है, और मैंने शहर में दुकान खोली। और इसके बाद जिस तरीके से घटनाएं घटित होती चली गई, तो सच पूछिए तो उसमें मेरा अपना योगदान कम है, अंबिकापुर नामक शहर का योगदान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और अगर मैं अंबिकापुर शहर के योगदान की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली वहां के सभी लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं कि मेरे फूफा जी हैं, बुआ हैं, मेरे और रिलेटिव्स हैं, बाद में फिर दोस्त बनते चले गए वे हैं, फिर लेक्चरर प्रोफेसर से परिचय होता चला गया, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, ढेर सारी ऐसी चीजें जुड़ती चली गई। और ये वो चीजें थी जिनके बारे में मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, जो घटनाओं की श्रृंखला जुड़ती चली गई, तो जब मैं पीछे मुड़ करके अपनी जिंदगी को देखता हूं और आज से जब उसकी तुलना करता हूं, तो अगर मैं उस समय इस बात पर विचार कर रहा होता कि शायद 50 साल के बाद की मेरी जिंदगी या 40 साल के बाद की मेरी जिंदगी ऐसी होगी, तो सवाल ही नहीं है कि मेरा दिमाग आज की इस तस्वीर को मुझे दिखा सका होता। तो स्थान के बारे में निर्णय करते समय हमें इन संभावनाओं को भी बकायदे अपने दिमाग में रखकर चलना चाहिए। तो मित्रों, आज बस इतना ही, अब 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी, तब ढेर सारी बातें होंगी, तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें, मेरी शुभकामनाएं भी स्वीकार करें, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।